दो राजा। मोआब ने इसराइल के विरुद्ध विद्रोह किया। अब अहज्याह सामरिया में अपने ऊपरी कमरे की जाली से गिर गया और घायल हो गया। इसलिए उसने एक्रोन के देवता बालजबूब से परामर्श करने के लिए दूत भेजे, यह देखने के लिए कि क्या मैं इस चोट से उबर पाऊंगा। परंतु यहोवा के दूत ने तिशबी एलियाह से कहा, सामरिया के राजा के दूतों के पास जाओ और उनसे पूछो, क्या इसराइल में कोई परमेश्वर नहीं है जो तुम एक्रोन के देवता बालजबूब से परामर्श करने को जा रहे हो? इसलिए प्रभु यों कहते हैं, तुम जिस बिस्तर पर लेटे हो उसे नहीं छोड़ोगे, तुम निश्चय ही मरोगे। यहोराम उसके बाद राजा बना। एलीशा को एलियाह का मंत्र सौंपना। एलियाह और एलीशा गिलगाल से अपने मार्ग पर थे। एलियाह ने एलीशा से कहा, यहां रुको, यहोवा ने मुझे बेतेल और यरीहो को भेजा है। उसने इनकार कर दिया। भविष्यवक्ताओं के दल में से 50 मनुष्य जाकर उस स्थान की ओर मुंह करके दूर खड़े हो गए जहां एलियाह और एलीशा यरदन के पास रुके थे। एलियाह ने अपना कपड़ा लिया, उसे लपेटा और उससे जल पर मारा और जल दाहिनी और बाईं ओर बंट गया और वे दोनों सूखी भूमि पर पार हो गए। और एलियाह ने एलीशा से कहा, मैं इससे पहले कि मैं तुमसे छीन लिया जाऊं, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूं? एलीशा ने उत्तर दिया, मुझे अपनी आत्मा का दोगुना हिस्सा विरासत में दो। आपने एक कठिन बात पूछी है, एलीजा ने कहा, फिर भी यदि आप मुझे तब देखेंगे जब मैं आपसे छीन लिया जाऊंगा तो यह आपका होगा, अन्यथा नहीं। जब वे साथ साथ चल रहे थे और बातचीत कर रहे थे तो अचानक अग्नि का रथ और अग्नि के घोड़े प्रकट हुए और उन दोनों को अलग कर दिया और एलियाह बवंडर में स्वर्ग पर चढ़ गया। एलीशा ने यह देखा और चिल्लाकर कहा, मेरे पिता, मेरे पिता। इसराइल के रथ और सवार और एलीशा ने उसे फिर कभी न देखा। फिर उसने अपने कपड़े पकड़ लिए और उन्हें फाड़ डाला। उसने एलियाह के पास से गिरा हुआ कपड़ा उठाया और लौटकर यरदन के तट पर खड़ा हुआ। तब उसने वह कपड़ा जो उस पर से गिर गया या ले लिया और उससे पानी पर मारा। एलियाह का परमेश्वर यहोवा अब कहाँ है? उसने पूछा। जब उसने पानी पर प्रहार किया तो वह दाहिनी ओर और बाईं ओर विभाजित हो गया और वह पार हो गया। एलीशा बेतेल को कर्मेल पर्वत पर गया और वहां से सामरिया लौट आया। अहाब के पुत्र योराम ने यहोवा की दृष्टि में बुरा किया, परंतु अपने माता पिता के समान नहीं। उसने बाल के उस पवित्र पत्थर से छुटकारा पा लिया जिसे उसके पिता ने बनवाया था। फिर भी वह यारोबाम के उन पापों से चिपका रहा जो उसने इसराइल से करवाए थे, उसने उनसे मुंह नहीं मोड़ा। फिर मोआब के राजा ने इसराइल के राजा के विरुद्ध विद्रोह किया। इसलिए राजा योराम ने सामरिया से प्रस्थान किया और सभी इसराइल को एकत्रित किया और उसने यहूदा के राजा यहोशापात को यह संदेश भेजा कि क्या तू मोआब से लड़ने को मेरे संग चलेगा? मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, उसने उत्तर दिया। उन्होंने हमला करने के लिए एदोम के रेगिस्तान से होकर जाना चुना, लेकिन पानी खत्म हो गया। इसराइल का राजा, यहूदा का राजा यहोशापात और एदोम का राजा एलीशा से मिलने गए। एलीशा ने कहा, यदि मैं यहोशापात की उपस्थिति का आदर न करता तो मैं तुम्हारी ओर न देखता और न तुम पर ध्यान भी करता। फिर उन्होंने कहा कि इस घाटी को खाइयों से भर दो, क्योंकि यहोवा यों कहता है, तुम न तो आंधी देखोगे और न वर्षा, तो भी यह तराई जल से भर जाएगी और तुम, तुम्हारे पशु और अन्य पशु पानी पियेंगे। प्रभु की दृष्टि में यह आसान बात है, वह मोआब को भी तेरे हाथ में कर देगा। तुम हर गढ़वाले शहर और हर बड़े कस्बे को उखाड़ फेंकोगे। तुम सब अच्छे वृक्षों को काट डालोगे, सब झरनों को काट डालोगे और सब अच्छे खेतों को पत्थरों से नष्ट कर दोगे। अगली सुबह बलिदान चढ़ाने के समय वहां एदोम की दिशा से पानी बह रहा था। सभी मोआबियों ने सुना था कि राजा उनसे लड़ने आए हैं, इसलिए हर आदमी, युवा और बूढ़े जो हथियार उठा सकते थे को बुलाया गया और सीमा पर तैनात किया गया। सुबह जब वे उठे तो पानी पर सूरज चमक रहा था। रास्ते भर मोआबियों को पानी लाल खून जैसा दिखाई दे रहा था। वह खून है, उन्होंने कहा। उन राजाओं ने आपस में युद्ध किया होगा और एक दूसरे का वध किया होगा। अब लूट की ओर मोआब, परंतु जब मोआबी इसराइल की छावनी के पास आए, तब इसराइली उठकर उनसे तब तक लड़ते रहे जब तक वे भाग न गए। और इसराइलियों ने देश पर चढ़ाई करके मोआबियों को घात किया। जब मोआब के राजा ने देखा कि युद्ध उसके विरुद्ध हो गया है, तो उसने अपने पहलौठे पुत्र को नगर की दीवार पर बलि के रूप में चढ़ाया। इसराइल के विरुद्ध क्रोध बड़ा था, वे पीछे हट गए और अपनी भूमि पर लौट आए। संकलक की टिप्पणी, हम कितनी बार मार्गदर्शन के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, लेकिन उनका उत्तर पाने के लिए उनके वचनों तक जाने में असफल हो जाते हैं। टिप्पणियां समाप्त करें। शुनेमिन स्त्री का विश्वास। एक दिन एलीशा शुनेम को गया। एक संपन्न महिला ने उनसे भोजन के लिए रुकने का आग्रह किया, इसलिए जब भी वह आता, खाने के लिए वहीं रुकता। उसने अपने पति से कहा, मैं जानती हूं कि यह आदमी जो अक्सर हमारे पास आता है, भगवान का एक पवित्र आदमी है। चलो छत पर एक छोटा सा कमरा बनाते हैं और उसमें उसके लिए एक बिस्तर और एक मेज, एक कुर्सी और एक लैंप रखते हैं। फिर वह जब भी हमारे पास आए तो वहीं रह सकता है। एक दिन जब एलीशा आया तो वह अपने कमरे में गया और वहां लेट गया। उसने अपने सेवक गेहजी से कहा, शूनेमिन को बुलाओ। उससे कहो, तुमने हमारे लिए यह सारी मुसीबत उठाई है, अब आपके लिए क्या किया जा सकता है? उसने जवाब दिया, अपनों के बीच ही मेरा घर है। एलीशा ने गेहजी से पूछा, उसके लिए क्या किया जा सकता है? गेहजी ने कहा, ठीक है, उसके कोई बेटा नहीं है और उसका पति बूढ़ा है। स्त्री को बुलाया गया और एलीशा ने कहा, अगले वर्ष इसी समय के आसपास, एलीशा ने कहा, तुम अपनी गोद में एक पुत्र धारण करोगी। अगले वर्ष एक पुत्र का जन्म हुआ। बच्चा बड़ा हुआ। एक दिन वह अपने पिता के पास गया जो काटने वालों के साथ था। मेरा सिर, मेरा सिर, उसने कहा। उसके पिता ने एक नौकर से कहा, इसे इसकी माँ के पास ले जाओ। जब नौकर उसे उठाकर उसकी माँ के पास ले गया तो लड़का दोपहर तक उसकी गोद में बैठा रहा और फिर वह मर गया। वह ऊपर गई और उसे परमेश्वर के भक्त के बिस्तर पर लिटा दिया, फिर दरवाजा बंद कर दिया और बाहर चली गई। वह चल पड़ी और कार्मेल पर्वत पर परमेश्वर के भक्त के पास आई। जब वह पहाड़ पर परमेश्वर के जन के पास पहुंची तो उसने उसके पैर पकड़ लिए। गेहजी उसे दूर धकेलने के लिए उसके पास आया, लेकिन परमेश्वर के आदमी ने कहा, उसे अकेला छोड़ दो, वह अत्यंत संकट में है, परंतु प्रभु ने इसे मुझसे छिपा रखा है और मुझे नहीं बताया कि क्यों। क्या मैंने आपसे एक बेटा मांगा था, महाराज, उसने कहा। क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था, मेरी उम्मीदें मत बढ़ाओ। जब एलीशा घर पहुंचा तो लड़का अपने सोफे पर मरा पड़ा था। वह अंदर गया, उन दोनों के लिए दरवाजा बंद कर दिया और प्रभु से प्रार्थना की। लड़के ने 7 बार छींक मारी और आंखें खोली। एलीशा ने शूनेमिन स्त्री से कहा, अपना पुत्र ले ले। वह अंदर आई, उसके पैरों पर गिर पड़ी और जमीन पर झुक गई। फिर वह अपने बेटे को लेकर बाहर चली गई। संकलक की टिप्पणी, एलीशा के माध्यम से प्रभु की शक्ति में उसका विश्वास कम नहीं हुआ। टिप्पणियां समाप्त करें। अराम का नामान। नामान अराम के राजा की सेना का प्रधान था। वह अपने स्वामी की दृष्टि में महान और प्रतिष्ठित व्यक्ति था, क्योंकि उसके द्वारा यहोवा ने अराम को विजय दिलाई थी। वह एक बहादुर सैनिक था, लेकिन उसे कुष्ठ रोग हो गया था। इसराइल की एक बंधुवाई लड़की, जो नामान की पत्नी की सेवा करती थी, ने अपनी स्वामिनी से कहा, काश मेरा स्वामी सामरिया में रहने वाले भविष्यद्वक्ता को देख पाता। वह उसका कुष्ठ रोग ठीक कर देगा। नामान अपने स्वामी के पास गया और उसे बताया कि इसराइल की लड़की ने क्या कहा था। अराम के राजा ने उत्तर दिया, हर हाल में जाओ, मैं इसराइल के राजा को एक पत्र भेजूंगा। तब नामान इसराइल के राजा के पास वह पत्र ले गया जिसमें लिखा था, इस पत्र के साथ मैं अपने सेवक नामान को तेरे पास भेज रहा हूँ कि तू उसका कोढ़ दूर कर दे। संकलक की टिप्पणी, अराम अर्मेनियाई लोगों के देश वर्तमान सीरिया में और उसके निकट स्थित था। टिप्पणियां समाप्त करें। जैसे ही इसराइल के राजा ने पत्र पढ़ा, उसने अपने वस्त्र फाड़ दिए और कहा, क्या मैं भगवान हूँ? क्या मैं मारकर पुनः जीवित कर सकता हूँ? यह व्यक्ति अपने कोढ़ से ठीक होने के लिए किसी को मेरे पास क्यों भेजता है? देखो वह कैसे मुझसे झगड़ा करने की कोशिश कर रहा है। जब परमेश्वर के भक्त एलीशा ने सुना कि इसराइल के राजा ने अपने वस्त्र फाड़े हैं, तब उसने उसके पास यह कहला भेजा कि तूने अपने वस्त्र क्यों फाड़े हैं? उस मनुष्य को मेरे पास आने दो और वह जान लेगा कि इसराइल में एक भविष्यद्वक्ता है। इसलिए नामान एलीशा के घर गया। एलीशा ने एक दूत के पास यह कहला भेजा कि जा, अपने आप को यर्दन में 7 बार धो, तब तेरा शरीर ज्यों का त्यों हो जाएगा और तू शुद्ध हो जाएगा। परंतु नामान क्रोधित होकर चला गया और कहा, मैंने सोचा था परमेश्वर क्या कहता है कि वह अवश्य मेरे पास आएगा और खड़ा होकर अपने परमेश्वर यहोवा से प्रार्थना करेगा और उस स्थान पर अपना हाथ फिराएगा और मुझे मेरे रोग से मुक्त कर देगा। कुष्ठ रोग। क्या दमिश्क की अबाना और फारपर नदियां इसराइल के किसी भी जल से उत्तम नहीं हैं? क्या मैं उनमें नहाकर शुद्ध नहीं हो सकता? इसलिए वह मुड़ा और गुस्से में चला गया। संकलक की टिप्पणी, जब भगवान का उत्तर आपकी अपेक्षाओं पर खरा न उतरे तो क्रोधित न हो। टिप्पणियां समाप्त करें। नामान के सेवक उसके पास गए और कहा, हे मेरे पिता, यदि भविष्यवक्ता ने तुझसे कोई बड़ा काम करने को कहा होता तो क्या तू वह न करता? तो फिर जब वह तुमसे कहता है धोकर शुद्ध हो जाओ तो और क्या होगा? इसलिए परमेश्वर के भक्त के कहने के अनुसार वह नीचे गया और यर्दन में 7 बार डुबाया और उसका शरीर जवान लड़के का सा हो गया और शुद्ध हो गया। तब नामान और उसके सब सेवक परमेश्वर के भक्त के पास लौट गए। वह उसके सामने खड़ा हुआ और बोला, अब मुझे पता चला कि इसराइल को छोड़कर पूरी दुनिया में कोई भगवान नहीं है। कृपया अब अपने सेवक से एक उपहार स्वीकार करें। नबी ने जवाब दिया, मैं कोई चीज स्वीकार नहीं करूंगा। और नामान के आग्रह करने पर भी उसने इनकार किया। तब नामान ने कहा, प्रभु तेरे दास को इस एक बात के लिए क्षमा करे, जब मेरा स्वामी रिम्मोन के मंदिर में दंडवत करने के लिए प्रवेश करता है और वह मेरी बाह का सहारा लेता है और मैं भी वहां दंडवत करता हूँ, जब मैं रिम्मोन के मंदिर में दंडवत करता हूँ, प्रभु तेरे दास को इसके लिए क्षमा करें। एलीशा ने कहा, शांति से जाओ। नामान के कुछ दूर चलने के बाद गेहजी नामान के पीछे दौड़ा। जब नामान ने उसे अपनी ओर दौड़ते देखा तो वह उससे मिलने के लिए रथ से उतर गया। क्या सब कुछ ठीक है? उसने पूछा। गेहजी ने यह कहकर झूठ बोला, मेरे स्वामी ने मुझे यह कहने को भेजा कि भविष्यद्वक्ताओं के दल में से 2 जवान एप्रैम के पहाड़ी देश से मेरे पास आए हैं। गेहजी ने 2 थैले चांदी और 2 जोड़ी वस्त्र लेकर घर में रख दिए। जब एलीशा ने पूछा, गेहजी तुम कहाँ थे? एलीशा ने पूछा। गेहजी ने फिर झूठ बोला, तेरा दास कहीं नहीं गया। परंतु एलीशा ने उससे कहा, जब वह पुरुष तुझसे भेंट करने को अपने रथ से उतरा तब क्या मेरी आत्मा तेरे साथ न थी? क्या यह उपहार स्वीकार करने का समय है? नामान का कोढ़ तुझ पर और तेरे वंश पर सर्वदा बना रहेगा। तब गेहजी एलीशा के सामने से चला गया और उसका कोढ़ बर्फ के समान सफेद हो गया। संकलक की टिप्पणी, लालच के परिणाम स्वरूप बहुत दुहक होता है और यह ईश्वर का नहीं है। टिप्पणियां समाप्त करें। अराम का राजा इसराइल से युद्ध कर रहा था। अपने अधिकारियों से बातचीत करने के बाद उसने कहा, मैं अपना डेरा अमुक स्थान पर लगाऊंगा। क्या वे इसराइल के राजा के पक्ष में थे? हम में से कोई नहीं, हे मेरे प्रभु राजा, उसके एक अधिकारी ने कहा, यह एलीशा है, भविष्यवक्ता, जो इसराइल में है, वही शब्द इसराइल के राजा को बताता है जो तू कहता है। तब राजा एक मजबूत सेना के साथ गया और नगर को घेर लिया। और दूसरे दिन भोर को जब परमेश्वर के भक्त का सेवक उठकर बाहर गया, तो घोड़ों और रथों समेत एक सेना ने नगर को घेर लिया था। हे प्रभु, हम क्या करें? नौकर ने पूछा, डरो मत, भविष्यवक्ता ने उत्तर दिया, जो हमारे साथ हैं, वे उन लोगों से अधिक हैं जो उनके साथ हैं। और एलीशा ने प्रार्थना की, हे प्रभु, उसकी आँखें खोल दे ताकि वह देख सके। तब यहोवा ने सेवक की आँखें खोल दीं, और उसने एलीशा के चारों ओर अग्नि के घोड़ों और रथों से भरी पहाड़ियों को देखा, जब शत्रु उसकी ओर बढ़ रहे थे। एलीशा ने यहोवा से प्रार्थना की, इन लोगों को अंधा कर दो। अत उसने उन्हें ऐसा मारा कि वे अंधा हो गए। एलीशा ने उनसे कहा, यह मार्ग नहीं है और यह नगर नहीं है, और मैं तुम्हें उस मनुष्य के पास पहुंचाऊंगा जिसे तुम ढूंढ रहे हो। जब वे शोमरोन नगर में पहुंचे, तब यहोवा ने उन मनुष्यों की आंखें खोल दी कि वे देख सकें। तब इसराइल के राजा ने एलीशा से पूछा, क्या मैं उन्हें मार डालूं? नहीं, उनके आगे भोजन और पानी रखो कि वे खा पी लें। जब वे खा पी चुके, तब उसने उनको विदा किया और वे अपने स्वामी के पास लौट गए। संकलक की टिप्पणी, अच्छाई से बुराई पर विजय प्राप्त करें और उन लोगों के लिए प्रार्थना करें जो आप पर अत्याचार करते हैं। टिप्पणियां समाप्त करें। एलीशा दमिश्क को गया और अराम का राजा बेनहदद बीमार था। राजा ने हजाएल को एलीशा से यह पूछने के लिए भेजा कि क्या मैं इस बीमारी से ठीक हो जाऊंगा। एलीशा ने उत्तर दिया, जाकर उससे कह, तू निश्चय चंगा हो जाएगा, परंतु यहोवा ने मुझ पर प्रकट किया है कि वह सचमुच मर जाएगा। तब उसने हजाएल से कहा, यहोवा ने मुझे दिखाया है कि तू अराम का राजा बनेगा। हजाएल अराम का राजा। तब हजाएल एलीशा को छोड़कर अपने स्वामी के पास लौट गया। जब बेनहदद ने पूछा, एलीशा ने तुमसे क्या कहा? हजाएल ने जवाब दिया, उन्होंने मुझसे कहा कि तुम निश्चित रूप से ठीक हो जाओगे। परंतु अगले दिन उसने एक मोटा कपड़ा लिया, उसे पानी में भिगोया और राजा के चेहरे पर फैलाया ताकि वह मर जाए। तब हजाएल उसके स्थान पर राजा हुआ। यहोशापात मर गया और यहोराम यहूदा के राजा के रूप में राज्य करने लगा। उसने अहाब की बेटी से विवाह किया। उसने यहोवा की दृष्टि में बुरा किया। फिर भी अपने सेवक दाऊद की खातिर यहोवा यहूदा को नष्ट करना नहीं चाहता था। यहोराम ने उसके साथ विश्राम किया और उसका पुत्र अहज्याह उसके स्थान पर राजा हुआ। उसने यरूशलेम में एक वर्ष तक राज्य किया। अहज्याह अहाब के पुत्र योराम के साथ अराम के राजा हजाएल के विरुद्ध युद्ध करने गया। अरामियों ने योराम को घायल कर दिया, इसलिए वह ठीक होने के लिए यिज्रेल लौट आया। येहू ने इसराइल का राजा नियुक्त किया। भविष्यवक्ता एलीशा ने येहू को इसराइल का राजा नियुक्त करने के लिए भविष्यद्वक्ताओं में से एक को भेजा। नबी ने दरवाज़ा खोला और भाग गया। जब येहू अपने साथी हाकिमों के पास निकला, तो उनमें से एक ने उससे पूछा, क्या सब ठीक है? येहू ने कहा, उसने इसराइल पर राजा होने के लिए मेरा अभिषेक किया। येहू ने यहोराम के विरुद्ध षड्यंत्र रचा और यिज्रेल को चला गया। इसराइल का राजा योराम और यहूदा का राजा अहज्याह अपने अपने रथ पर सवार होकर येहू से मिलने को निकले। तब येहू ने अपना धनुष खींचकर यहोराम के कंधों के बीच में तीर मारा। तीर उसके हृदय में लगा और वह अपने रथ पर गिर पड़ा। येहू ने अपने रथ के सरदार बिदकर से कहा, उसे उठाकर यहोवा के वचन के अनुसार यिज्रेली नाबोत के खेत में फेंक दे। उसने यहूदा के राजा अहज्याह को भी मार डाला। तब येहू यिज्रेल को गया। जब इजेबेल ने इसके बारे में सुना, तो उसने अपनी आंखों पर रंग लगाया, अपने बालों को व्यवस्थित किया और खिड़की से बाहर देखा। जैसे ही येहू ने फाटक में प्रवेश किया, उसने पूछा, हे जिम्री, हे अपने स्वामी के हत्यारे, क्या तू कुशल से आया है? जेरू ने खिड़की की ओर देखा और पुकारा, मेरी तरफ कौन है? कौन? दो तीन हिजड़ों ने उसकी ओर देखा। उसे नीचे फेंक दो, येहू ने कहा। उन्होंने उसे नीचे फेंक दिया और उसका कुछ खून दीवार और घोड़ों पर फैल गया और उन्होंने उसे पैरों से कुचल दिया। येहू ने भीतर जाकर खाया पिया। उस शापित महिला का ख्याल रखना, उसने कहा, और उसे दफना दो, क्योंकि वह एक राजा की बेटी थी, परंतु जब वे उसे मिट्टी देने के लिए निकले तो उन्हें उसकी खोपड़ी, उसके पैरों और हाथों के सिवा कुछ न मिला, जैसा एलियाह ने भविष्यवाणी की थी। संकलक की टिप्पणी। ओह, दुष्ट और दुष्ट जीवन का विवेक। टिप्पणियां समाप्त करें। यहोवा ने एलियाह से जो वचन कहा था, उसके अनुसार येहू ने अहाब के घराने के 70 पुत्रों और योराम के सारे घराने को मार डाला। फिर उसने बाल के सभी भविष्यवक्ताओं को बाल के मंदिर में बलिदान के लिए इकट्ठा होने के लिए बुलाया, जिसके बाद उसने उन सभी को मार डाला और उनके मंदिर को जला दिया। तो भी येहू ने इसराइल के परमेश्वर यहोवा की व्यवस्था को अपने संपूर्ण मन से मानने में चौकसी न की। वह यारोबाम के उन पापों से दूर न हुआ जो उसने इसराइल से करवाए थे। येहू अपने पुरखाओं के संग सो गया और उसे सामरिया में मिट्टी दी गई। उसका पुत्र यहोआहाज उसका उत्तराधिकारी हुआ। योआश राजा बनेगा। जब यहूदा के राजा अहज्याह की माता अतल्याह ने देखा कि उसका पुत्र मर गया है, तब वह सारे राजकुल को नाश करने लगी। परंतु अहज्याह की बहन यहोशेबा ने अहज्याह के पुत्र योआश को उन हाकिमों के बीच में से जो घात करने पर थे चुरा ले गई। जब अतल्याह देश पर शासन कर रही थी, तब उसने उसे अपनी धाय के पास यहोवा के मंदिर में 6 वर्ष तक छिपाए रखा। 7वें वर्ष में याजक यहोयादा ने 100 दलों के प्रधानों, कैरियों, जल्लादों और परुओं को बुलवा भेजा और उन्हें यहोवा के मंदिर में अपने पास ले आया और उसने उनसे वाचा बांधी और उन्हें यहोवा के मंदिर में शपथ खिलाई। यहोयादा ने राजपुत्र को बाहर निकाला और उस पर राजमुकुट रखा। उसने उसे वाचा की एक प्रति भेंट की और उसे राजा घोषित किया। उन्होंने उसका अभिषेक किया और लोगों ने तालियां बजाकर जय जयकार किया। राजा दीर्घायु हो। याजक यहोयादा ने सेनापतियों को आदेश दिया कि अतल्याह को पंक्ति के बीच से बाहर ले आओ और जो कोई भी उसके पीछे हो उसे तलवार से मार डालो, क्योंकि याजक ने कहा था, उसे यहोवा के मंदिर में मार डाला न जाए। उन्होंने उसे पकड़ लिया और मार डाला। तब शतपतियों, कैरियों, रक्षकों और देश के सब लोगों ने राजा को यहोवा के मंदिर से नीचे लाया और पहरुओं के फाटक से होकर महल में गए। तब राजा ने राज सिंहासन पर अपना स्थान ग्रहण किया और देश के सभी लोगों ने आनंद मनाया और नगर में सन्नाटा छा गया, क्योंकि अतल्याह महल में तलवार से मार डाला गया था। जितने वर्षों तक यहोयादा याजक ने योआश को आज्ञा दी, उतने वर्ष तक वह वही करता रहा जो यहोवा की दृष्टि में ठीक है। हजाएल यरूशलेम पर आक्रमण करने गया, परंतु यहूदा के राजा योआश ने अपने पुरखाओं, यहूदा के राजाओं यहोशापात, यहोराम और अहज्याह द्वारा समर्पित की गई सभी पवित्र वस्तुओं और स्वयं समर्पित किए गए उपहारों और यहोवा के मंदिर और उसके खजानों में पाए गए सभी सोने को ले लिया और उसने उन्हें अराम के राजा हजाएल के पास भेज दिया और वह यरूशलेम से हट गया। संकलक की टिप्पणी। योआश ने प्रभु से यह नहीं पूछा कि क्या करना है। टिप्पणियां समाप्त करें। राजाओं का स्थान लेना। 40 वर्षों तक राजा रहने के बाद योआश की हत्या कर दी गई। उसका पुत्र अमस्याह उसके बाद राजा बना। येहू का पुत्र यहोआहाज इसराइल का राजा हुआ। उसने बुराई की, इसलिए यहोवा का कोप इसराइल पर भड़क उठा और उसने उन्हें बहुत समय तक अराम के राजा हजाएल और उसके पुत्र बेहदद के वश में रखा। यहोआहाज के बाद यहोआश राजा बना। डी डॉट यहूदा के राजा अमस्याह ने वही किया जो यहोवा की दृष्टि में ठीक था। जब राज्य पूरी तरह से उसकी मुट्ठी में आ गया तो उसने उन अधिकारियों को मार डाला जिन्होंने उसके पिता राजा की हत्या की थी। तो भी उसने मूसा की व्यवस्था की पुस्तक में लिखे हुए वचन के अनुसार, जहां यहोवा ने यह आज्ञा दी है, हत्यारों के पुत्रों को मार डाला न गया कि पुत्रों के कारण पिता न मार डाले जाएं और न पुत्रों के लिथे पुत्र मार डाले जाएं। उनके पिता को अपने पापों के लिए मरना होगा। इडॉट यहोआश ने यरूशलेम पर आक्रमण किया और उस पर कब्जा कर लिया और लगभग 600 फुट की दीवार तोड़ दी और यहोवा के मंदिर और राजमहल के भंडारों में जो सोना चांदी और सब सामान मिला सब ले लिया। उसने लोगों को भी बंधक बना लिया और सामरिया लौट आया। एफ डॉट यारोबाम यहोआश के बाद राजा बना। जी डॉट अजरयाह अमस्याह का उत्तराधिकारी हुआ, परंतु यहोवा ने उसे कुष्ठ रोग से पीड़ित कर दिया। एच डॉट योताम अजरयाह के पुत्र ने अजरयाह के जीवनकाल के दौरान लोगों पर शासन किया और उसके बाद राजा बना। आई डॉट जकरयाह इसराइल का राजा बना और शल्लूम द्वारा हत्या किए जाने से 6 महीने पहले उसने शासन किया। जे डॉट मनहेम द्वारा हत्या किए जाने से पहले शल्लूम 1 महीने तक राजा था। के डॉट अश्शूर के राजा पूल ने इसराइल पर आक्रमण किया और मनहेम ने पूल को फिरौती दी, इसलिए वह पीछे हट गए। एल डॉट मनहेम का पुत्र पकहयाह उसके बाद राजा बना, लेकिन उसकी हत्या कर दी गई। एम डॉट होशे ने पेकह की हत्या कर दी और उसके बाद राजा बना। एन डॉट अश्शूर के राजा तिगलत पिलेसेर ने इसराइल के अधिकांश भाग पर कब्जा कर लिया और लोगों को अश्शूर में निर्वासित कर दिया। ओ डॉट यहूदा के राजा योताम ने वही किया जो यहोवा की दृष्टि में ठीक था, जैसा उसके पिता उज्जियाह ने किया था। योताम का पुत्र आहाज राजा बना, परंतु वह इसराइल के राजाओं के मार्ग पर चला और अपने पुत्र को भी आग में होम कर दिया। पी डॉट अराम के राजा रसीन और इसराइल के राजा पेकह ने आहाज को घेरने के लिए यरूशलेम पर चढ़ाई की, परंतु वे उस पर विजय न पा सके। आहाज ने दूतों से अश्शूर के राजा तिगलत पिलेसेर के पास यह कहला भेजा कि आकर मुझे अराम के राजा और इसराइल के राजा के हाथ से बचा जो मुझ पर चढ़ाई करते हैं। असीरिया के राजा ने दमिश्क पर हमला करके और उस पर कब्जा करके इसका पालन किया। उसने उसके निवासियों को कीर में निर्वासित कर दिया और रसिन को मार डाला। तब राजा आहाज ने दमिश्क में एक वेदी देखी और उरिया याजक के पास वेदी का एक रेखाचित्र उसके निर्माण की विस्तृत योजना के साथ भेजा। इसलिए उरिया याजक ने उन सभी योजनाओं के अनुसार एक वेदी बनाई जो राजा आहाज ने दमिश्क से भेजी थी और राजा आहाज के लौटने से पहले इसे पूरा किया। जब राजा दमिश्क से लौट आया और वेदी को देखा तो वह उसके पास आया और उस पर भेंट चढ़ाई। बाद में जब आहाज की मृत्यु हुई तो हिजकिय्याह राजा बना। क्यू डॉट अश्शूर का राजा शल्मनेसेर होशे पर आक्रमण करने को आया और उसे पकड़कर बंदीगृह में डाल दिया और सारे देश पर आक्रमण करके इसराइलियों को निर्वासित करके अश्शूर में ले गया। उसने उन्हें मादियों के नगरों में बसाया और बाबुल, कुथा, अववा, हमात और सेपरवैम से लोगों को लाया और इसराइलियों के स्थान पर सामरिया के नगरों में बसाया। उन्होंने सामरिया पर अधिकार कर लिया और उसके नगरों में रहने लगे। हिजकिय्याह यहूदा का राजा। यहूदा के राजा हिजकिय्याह ने वही किया जो यहोवा की दृष्टि में ठीक था, जैसा उसके पिता दाऊद ने किया था, और यहोवा उसके साथ था। उसने जो कुछ भी किया उसमें वह सफल रहा। उसने अश्शूर के राजा सन्हेरीब के विरुद्ध विद्रोह किया और उसकी सेवा नहीं की। इसलिए सन्हेरीब ने यहूदा के सभी गढ़वाले शहरों पर हमला किया और उन पर कब्जा कर लिया। हिजकिय्याह ने लाकीश में अश्शूर के राजा को यह संदेश भेजा, मैंने गलत किया है, मुझसे दूर हो जाओ और तुम मुझसे जो भी मांगोगे मैं वह चुका दूंगा। हिजकिय्याह ने उसे वह सारी चांदी दे दी जो यहोवा के मंदिर और राजमहल के भंडारों में मिली थी। इस समय यहूदा के राजा हिजकियाह ने यहोवा के मंदिर के किवाड़ों और चौखटों को जिस सोने से ढांका था उसे उतारकर अश्शूर के राजा को दे दिया। अश्शूर के राजा ने यरूशलेम में राजा हिजकियाह के पास अपने सेनापति भेजे जिन्होंने कहा, तू अपना यह भरोसा किस पर आधारित कर रहा है? यदि तुम मुझसे कहते हो, हम अपने परमेश्वर यहोवा पर निर्भर हैं, क्या वह वही नहीं है जिसके ऊंचे स्थानों और वेदियों को हिजकियाह ने यह कहकर हटा दिया था, तुम्हें यरूशलेम में इस वेदी के सामने दंडवत करना होगा? तब एलयाकीम, शेबना और योआ ने कहा, कृपया अपने सेवकों से अरामी भाषा में बात करें, क्योंकि हम इसे समझते हैं। शहरपनाह पर लोगों के सामने हमसे इब्रानी भाषा में बात न करें। तब सेनापति ने खड़े होकर इब्रानी में पुकार कर कहा, हिजकियाह तुमको धोखा न दे, वह तुमको मेरे हाथ से नहीं बचा सकता, और जब वह कहता है कि यहोवा इस नगर को निश्चय बचाएगा, तब तुम उस पर भरोसा न रखो, अश्शूर के राजा के हाथ में न दिया जाएगा। मेरे साथ मेल कर और मेरे पास निकल आ उसे। तब हिजकियाह ने अपने वस्त्र फाड़े और टाट ओढ़ लिया और यहोवा के मंदिर में गया। उसने भविष्यवक्ता यशायाह को बुलाया जिसने कहा, अपने स्वामी से कहो, प्रभु यों कहते हैं, जो कुछ तुमने सुना है उससे मत डरो, वे शब्द जिनके द्वारा अश्शूर के राजा के अधीनस्थों ने मेरी निंदा की है। हिजकियाह ने प्राप्त किया, तब उसने यहोवा के मंदिर में जाकर उसे यहोवा के सामने फैलाया और हिजकियाह ने यहोवा से प्रार्थना की, हे यहोवा इसराइल के परमेश्वर, तू ही करूबों के बीच में विराजमान है, पृथ्वी के सब राज्यों के ऊपर परमेश्वर, तूने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया है। हे यहोवा कान लगाकर सुन, हे यहोवा, और जो वचन सन्हेरीब ने जीवित परमेश्वर का अपमान करने को भेजा है उसे सुन। अब हे हमारे परमेश्वर यहोवा, हमें उसके हाथ से बचा, जिससे पृथ्वी के सभी राज्य जान ले कि हे यहोवा केवल तू ही परमेश्वर है। तब यशायाह ने हिजकियाह को संदेश भेजा, यहोवा इसराइल का परमेश्वर कहता है, मैंने अश्शूर के राजा सन्हेरीब के विषय में तुम्हारी प्रार्थना सुनी है, वह इस नगर में प्रवेश नहीं करेगा या यहाँ तीर नहीं चलाएगा। मैं अपनी खातिर और अपने सेवक दाऊद की खातिर इस शहर की रक्षा करूंगा और इसे बचाऊंगा। उस रात यहोवा का दूत निकला और अश्शूर की छावनी में 185,000 पुरुषों को मार डाला। अगली सुबह जब लोग उठे तो वहां सारी लाशें पड़ी थीं। अत अश्शूर के राजा सन्हेरीब ने छावनी तोड़ दी और पीछे हट गया। वह नीनवे लौट आया और वहीं रहने लगा। एक दिन जब सन्हेरीब अपने देवता निस्रोक के मंदिर में आराधना कर रहा था, उसके पुत्रों अद्रम्मेलेक और शरेसेर ने उसे तलवार से मार डाला और उसका पुत्र एसरहद्दोन उसके स्थान पर राजा हुआ। उन दिनों हिजकियाह बीमार हो गया और मरने पर था। आमोस के पुत्र यशायाह भविष्यद्वक्ता ने उसके पास जाकर कहा, यहोवा यों कहता है, अब के घराने की व्यवस्था कर, क्योंकि तू मरने पर है, तुम ठीक नहीं होगे। हिजकियाह ने दीवार की ओर मुंह करके यहोवा से प्रार्थना की, हे प्रभु स्मरण रख कि मैं तेरे सामने किस प्रकार सच्चाई से और पूरे मन से भक्ति करके चलता आया हूँ और जो तेरी दृष्टि में अच्छा है वही किया है। और हिजकियाह फूट फूट कर रोने लगा। इससे पहले कि यशायाह बीच वाले आंगन से चला जाए, यहोवा का यह वचन उसके पास पहुंचा कि लौट जा और मेरी प्रजा के प्रधान हिजकियाह से कह कि तेरे मूल पुरुष दाऊद का परमेश्वर यहोवा यों कहता है कि मैंने तेरी प्रार्थना सुनी है और तुम्हारे आंसू देखे, मैं तुम्हें ठीक कर दूंगा। अब से तीसरे दिन तुम यहोवा के मंदिर को जाओगे, मैं तुम्हारे जीवन में 15 वर्ष जोड़ दूंगा और मैं तुझे और इस नगर को अश्शूर के राजा के हाथ से बचाऊंगा। मैं अपनी खातिर और अपने नौकर डेविड की खातिर इस शहर की रक्षा करूंगा। बेबिलोन के राजा मरोदक बलदान ने हिजकियाह को पत्र और एक उपहार भेजा, क्योंकि उसने हिजकियाह की बीमारी के बारे में सुना था। हिजकियाह ने दूतों का स्वागत किया और उन्हें वह सब कुछ दिखाया जो उसके भंडार में था। तब यशायाह भविष्यद्वक्ता ने राजा हिजकियाह के पास जाकर पूछा, उन पुरुषों ने क्या कहा और वे कहां से आए थे? हिजकियाह ने उत्तर दिया, वे बेबीलोन से आए थे। नबी ने पूछा, उन्होंने तुम्हारे महल में क्या देखा? हिजकियाह ने कहा, सब कुछ। तब यशायाह ने हिजकियाह से कहा, यहोवा का वचन सुनो, वह समय अवश्य आएगा जब तेरे महल में जो कुछ है और जो कुछ तेरे पुरखाओं ने आज के दिन तक रखा है वह सब बेबीलोन को ले जाया जाएगा, कुछ भी नहीं बचेगा, प्रभु कहते हैं। और तेरे वंश में से कुछ, अर्थात तेरे मांस और लोहू में से जो तुझ से उत्पन्न होंगे, ले लिए जाएंगे और वे बेबीलोन के राजा के भवन में नपुंसक बन जाएंगे। हिजकियाह ने अपने पुरखाओं के साथ विश्राम किया और उसका पुत्र मनश्शे उसके स्थान पर राजा हुआ। जब मनश्शे राजा बना तब वह 12 वर्ष का था। उसने यहोवा की दृष्टि में बुरा किया, उसने बहुत से निर्दोष लोगों का खून भी बहाया। वह मर गया और उसका पुत्र आमोन उसका उत्तराधिकारी बना। आमोन की उसके अधिकारियों ने हत्या कर दी और उसके पुत्र राजा योशियाह को लोगों ने राजा नियुक्त कर दिया। योशियाह राजा जो दाऊद के मार्ग पर चला। जब योशियाह राजा बना तब वह 8 वर्ष का था और उसने यरूशलेम में 31 वर्ष तक राज्य किया। उसने वही किया जो यहोवा की दृष्टि में ठीक है और अपने पिता दाऊद की सी सब चालों पर चला और न दाहिनी ओर मुड़ा और न बाईं ओर। राजा योशियाह ने सचिव शापान को महायाजक हिल्कियाह के पास भेजा और उससे मंदिर के काम की देखरेख के लिए नियुक्त व्यक्तियों को धन देने को कहा। हिल्कियाह ने शापान से कहा, मुझे यहोवा के मंदिर में व्यवस्था की पुस्तक मिली है। उसने उसे शापान को दिया और शापान ने उसे पढ़ा और राजा के पास जाकर उसे राजा के सामने पढ़कर सुनाया। जब राजा ने व्यवस्था की पुस्तक की बातें सुनी तो अपना वस्त्र फाड़कर कहा, प्रभु का क्रोध महान है जो हम पर भड़का है, क्योंकि हमारे पुरखाओं ने इस पुस्तक की बातें नहीं मानी। उन्होंने हमारे विषय में जो कुछ वहां लिखा है उसके अनुसार कार्य नहीं किया है। हिल्कियाह याजक, अहीकाम, अकबोर, शापान और असायाह भविष्यवक्ता हुल्दा से बात करने गए। उसने उनसे कहा, इसराइल का परमेश्वर यहोवा यों कहता है, मैं इस स्थान और इसके निवासियों पर विपत्ति डालने पर हूँ, क्योंकि उन्होंने मुझे त्याग कर पराए देवताओं के लिए धूप जलाया और अपनी बनाई हुई सब मूर्तों के द्वारा मुझे क्रोध दिलाया है। इस कारण मेरा क्रोध इस स्यान पर भड़केगा और शांत न होगा। यहूदा के राजा से कहो, क्योंकि तेरा हृदय संवेदनशील था और तूने प्रभु के सामने दीनता की और मेरे सामने रोया, इसलिए मैंने तेरी सुन ली है। इस कारण मैं तुमको तुम्हारे पुरखाओं के पास इकट्ठा करूंगा और तुम शांति से मिट्टी दिए जाओगे। तुम्हारी आंखें वह सारी विपत्ति नहीं देख सकेंगी जो मैं इस स्थान पर लाने जा रहा हूं। तब राजा यहूदा के लोगों, यरूशलेम के लोगों, याजकों और भविष्यवक्ताओं, छोटे से लेकर बड़े तक सभी लोगों के साथ यहोवा के मंदिर में गया। उसने उनकी सुनवाई में वाचा की पुस्तक के सभी शब्दों को पढ़ा जो प्रभु के मंदिर में पाया गया था। राजा खंभे के पास खड़ा हुआ और प्रभु की उपस्थिति में वाचा को नवीनीकृत किया, प्रभु का अनुसरण करने और अपने पूरे दिल और अपनी पूरी आत्मा के साथ उसकी आज्ञाओं, विनियमों और आदेशों का पालन करने के लिए इस प्रकार इस पुस्तक में लिखे गए वाचा के शब्दों की पुष्टि की। तब सभी लोगों ने स्वयं को वाचा का वचन दिया। राजा ने सभी लोगों को यह आदेश दिया, जैसा कि वाचा की इस पुस्तक में लिखा है वैसे ही अपने परमेश्वर यहोवा के लिए फसह मनाओ। इसलिए फसह यरूशलेम में प्रभु के लिए मनाया गया। न तो योशियाह से पहले और न ही उसके बाद उसके जैसा कोई राजा हुआ जो मूसा की सारी व्यवस्था के अनुसार अपने पूरे दिल, अपनी पूरी आत्मा और अपनी पूरी ताकत के साथ प्रभु की ओर मुड़ा। बाबुल की बंधुआई निकट है। जब योशियाह राजा था तब मिस्र का राजा फिरौन नको अश्शूर के राजा की सहायता करने के लिए परात नदी तक गया। राजा योशियाह युद्ध में उसका सामना करने के लिए निकला, परंतु नेको ने उसका सामना किया और मगिद्दो में उसे मार डाला। योशियाह का पुत्र यहोआहाज राजा नियुक्त किया गया। उसने केवल 3 महीने तक शासन किया, जब फिरौन नेको ने उसे जंजीरों में डाल दिया। एलियाकीम को उसके पिता के स्थान पर राजा बनाया और उसका नाम बदलकर यहोयाकीम रख दिया। तब वह यहोआहाज को पकड़कर मिस्र ले गया और वहीं वह मर गया। यहोयाकीम ने अपने पुरखाओं की नाई यहोवा की दृष्टि में बुरा किया। यहोयाकीम के शासनकाल के दौरान बेबीलोन के राजा नबूकदनेस्सर ने देश पर आक्रमण किया और यहोयाकीम 3 वर्ष के लिए उसका जागीरदार बन गया, परंतु उसने नबूकदनेस्सर के विरुद्ध विद्रोह किया। यहोवा ने यहूदा को नष्ट करने के लिए बेबीलोनियाई, अरामी, मोआबी और अम्मोनी हमलावरों को भेजा। यहोयाकीम मर गया और यहोयाकीम 3 महीने के लिए राजा हुआ। उसी समय बाबुल के राजा नबूकदनेस्सर के हाकिमों ने यरूशलेम पर चढ़कर उसे घेर लिया, और जब उसके हाकिम उसे घेर रहे थे तब नबूकदनेस्सर आप ही नगर पर चढ़ाया और यहोयाकीम को बंदी बना लिया। नबूकदनेस्सर ने यहोवा के मंदिर और राजमहल में से सारा खजाना निकाल लिया, और इसराइल के राजा सुलेमान ने यहोवा के मंदिर के लिए जो सोने की वस्तुएं बनवाई थीं, उन सब को भी ले लिया। उसने सारे यरूशलेम को बंधुआई में ले लिया, सब हाकिमों और योद्धाओं को और सब कारीगरों और कारीगरों को, जो कुल मिलाकर 10,000 थे। केवल देश के सबसे गरीब लोग ही बचे थे। उसने यहोयाकीम के चाचा मत्तन्याह को उसके स्थान पर राजा बनाया और उसका नाम बदलकर सिदकियाह रख दिया। अब सिदकियाह ने बाबुल के राजा के विरुद्ध विद्रोह किया। परिणामस्वरूप नबूकदनेस्सर ने अपनी पूरी सेना के साथ यरूशलेम पर चढ़ाई की। उसने नगर के बाहर डेरे डाले और उसके चारों ओर घेराबंदी की। शहर की दीवार तोड़ दी गई और पूरी सेना रात में राजा के बगीचे के पास दोनों दीवारों के बीच के द्वार से भाग गई। सिदकियाह को पकड़ लिया गया और बेबीलोन ले जाया गया, जहां उसे सजा सुनाई गई। उन्होंने उसकी आंखों के सामने सिदकियाह के पुत्रों को मार डाला, उसकी आंखें निकाल लीं, उसे कांसे की बेड़ियों से बांध दिया। शाही रक्षकों का सरदार नबूजरदान यरूशलेम आया और यहोवा के मंदिर, राजमहल, यरूशलेम के सभी घरों और हर महत्वपूर्ण इमारत में आग लगा दी। तब बेबीलोन की सारी सेना ने यरूशलेम के चारों ओर की शहरपनाह को तोड़ दिया, और जो लोग नगर में रह गए थे और जो लोग बाबुल के राजा के पास चले गए थे, उन सब को भी बंधुआई में ले गए। दो राजाओं की ओर से मुख्य बिंदु। राजा, शक्तिशाली नेता, अपने नागरिकों पर बहुत प्रभाव रखते हैं। कुछ अच्छे थे, लेकिन अधिकांश दुष्ट और परमेश्वर की आज्ञाओं के प्रति विद्रोही थे। इसी तरह आध्यात्मिक साम्राज्य में चर्च के नेता, पादरी, उपदेशक और चरवाहे उन लोगों पर शक्ति और अधिकार का प्रयोग करते हैं जिनकी उन्हें चरवाही करनी है, कुछ अच्छे के लिए लेकिन सभी के लिए नहीं। एक चरवाहा अपनी भेड़ों के आगे आगे चलता है और वे उसके पीछे पीछे चलती हैं, क्योंकि वे उसकी आवाज पहचानते हैं। यूहन्ना 10:04 से। राष्ट्रों या व्यक्तियों के पापों की सजा नहीं होती, लेकिन वे पश्चाताप कर सकते हैं और ईश्वर के पास लौट सकते हैं। नई वाचा के तहत प्रत्येक व्यक्ति अपने स्वयं के पापों के लिए जिम्मेदार है, न कि अपने माता पिता, अपने बच्चों या अपने आध्यात्मिक नेताओं के पापों के लिए, क्योंकि हम सबको मसीह के न्याय आसन के सामने उपस्थित होना है कि हर एक को अपने शरीर में रहते हुए किए गए कामों का फल मिले, चाहे वे अच्छे हों या बुरे। 2 कुरिन्थियों 5:10 से।